दिन भर तारीख 11 जनवरी दिन गुरुवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अमरीकी मदद बंद होने के बाद पाकिस्तान का ऐलान, वाशिंगटन के साथ सैन्य और खुफिया सहयोग पर रोक, क्या होगा असर?
हर दर्जे पे बातचीत हो रही है कि भाई हम आगे रास्ता कैसे निकालेंगे।
महबूबा सरकार के युवाओं को माफी देने के फैसले से क्या बदलेंगे कश्मीर घाटी के हालात, क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक?
ये एक कोशिश है उस यूथ को अपील करने की, ताकि कल आने वाले इलेक्शन जो पंचायत के हैं, कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके।
और सुप्रीम कोर्ट के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों के दोबारा जांच के आदेश पर क्या कहते हैं पीड़ितों के परिजन?
क्या मेरे हस्बैंड ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो मेरे को ऐसे मेरे बच्चों को अनाथ ऐसे कर दिया कि तो हमारे को न्याय तो मिले मैम।
होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। अमेरिका के पाकिस्तान को सैन्य मदद रोकने के बाद अब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहा है और शांति स्थापित करने की कोशिश करता रहेगा। मध्य प्रदेश में वन विभाग के अधिकारियों ने एक चीते की तलाश के लिए बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बताया जा रहा है कि इस चीते ने बीते 3 दिनों में 3 बच्चों को मार दिया है। एक अधिकारी का कहना है कि छिंदवाड़ा के सैकड़ों ग्रामीण भी खोज अभियान में उनकी मदद कर रहे हैं। बीते साल भारत में हाथियों और बाघों के हमलों में 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जानकारों का कहना है कि इन आंकड़ों में चीते और अन्य जंगली जानवरों के हमलों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। यूरोपीय संघ ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सभी पक्ष साल 2015 में ईरान परमाणु समझौते को पूरी तरह लागू करने में मदद करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस परमाणु समझौते को रद्द कर सकते हैं। ब्रसेल्स में बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनी ने कहा ईरान परमाणु ईंधन के उत्पादन के संबंध में समझौते का पूरी तरह से पालन कर रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमार गैब्रियल ने कहा कि इस समझौते को रद्द करने का बुरा संकेत उन देशों को जाएगा जो परमाणु आकांक्षाएं रखते हैं।
It's absolutely necessary to have these signal that it's possible by diplomatic approaches to prevent.
ऐसे वक्त में जब दुनिया के और देश इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे वो परमाणु हथियार अपनी सेना तक पहुंचाएं, यह बेहद जरूरी है कि इस तरह के संकेत दिए जाएं कि राजनयिक रास्तों के जरिए परमाणु हथियारों को बनाने पर रोक लगाई जा सकती है। और अगर दुनिया का एकमात्र समझौता जो परमाणु सशस्त्रीकरण को रोकने की बात करता है उस पर नकारात्मक असर पड़ता है तो इसके बेहद घातक संकेत जाएंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री सिगमार गैब्रियल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए आखिरी दिन की बातचीत के बाद कहा है कि अभी भी मुख्य मुद्दों पर बातचीत में सहमति बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी गठबंधन सरकार बनाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक्स के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, ताकि सरकार बनाने की दिशा में सकारात्मक चर्चा हो सके। बताया जा रहा है कि प्रवासी संकट और यूरोप के मसले पर सहमति नहीं बन पा रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य और यूरोपीय संसद के पूर्व अध्यक्ष मार्टिन शुल्स ने कहा आज हम बीते 4 दिनों में जो बातचीत हुई उसकी बात करें। बातचीत में प्रगति तो दर्ज की गई है, हम उसी की बात करते हैं। हमें सफलता मिली है, कई मुद्दे हैं जिस पर दोनों पक्ष एकमत हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम सहमति नहीं बन पाई है। मुझे उम्मीद है कि आज की शाम तक ये बातचीत खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें इस मामले में समय चाहिए और हम एक नतीजे तक जरूर पहुंचना चाहते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य मार्टिन शुल्स के शब्द। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने राज्यों को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को व्यक्ति की नौकरी के साथ जोड़ दें। इसके बाद अब पहली बार राज्य उन लोगों को मेडिकेड कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवा देने से मना कर पाएंगे जो बेरोजगार हैं, स्कूल में हैं या फिर सामुदायिक सेवा करते हैं। मेडिकेड एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो 1960 में अस्तित्व में आया था। इसके तहत ऐसे लोगों को स्वास्थ्य सेवा दी जाती है जो निजी अस्पतालों के महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। आलोचकों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा पाना हर व्यक्ति का अधिकार है और बेरोजगार होने के कारण किसी को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। दिन भर में सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि उनका देश अमरीका के साथ सैन्य और खुफिया साझेदारी पर रोक लगा रहा है। इसके पहले अमरीका ने पाकिस्तान की मदद पर रोक लगाने का ऐलान किया था और कहा था कि हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई होने तक ये मदद बंद रहेगी। पाकिस्तान ने अमरीकी कदम के जवाब में ही ये फैसला किया है। सुनिए इस्लामाबाद से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की फौजी मदद बंद करने के बाद से वाशिंगटन के साथ खुफिया मालूमात का तबादला और फौजी कोऑपरेशन रोक दिया गया है। वो इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक में तकरीर कर रहे थे।
वाइड फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन एंड डिफेंस कोऑपरेशन व्हिच
बाद में खुर्रम दस्तगीर का इसी किस्म का बयान पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट से भी जारी किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं और वो अमन को कायम रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। एक हफ्ता पहले अमरीका की विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर उनकी तकरीबन तमाम सिक्योरिटी इमदाद रोक रही है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का ये भी कहना था कि वो पाकिस्तान सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर वो अमरीका के इत्तेहादी नहीं बनते तो मामलात पहले की तरह नहीं रहेंगे। पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट पर जारी होने वाले बयान में रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अमरीका अगर अपने स्थल पाना चाहता है तो उसे पाकिस्तान के साथ फिर से स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू करना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ धमकियों से बाज रहना होगा। उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि इस रीजन में अलकायदा को अमरीका के साथ पाकिस्तानी कोशिशों से ही खत्म किया गया। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक लोकल टीवी चैनल जियो को अपने इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ संघ खत्म हो गया है।
हमें पूरा रिलेशनशिप जो है उनके साथ अपना रिव्यू करना चाहिए। हम उनको इत्तेहादी कहने से पहले इत्तेहादी के लफ्ज का मतलब समझें। हमें उन्हें दोस्त कहने से पहले दोस्त के साथ जो अटैचमेंट होती है मुख्तलिफ ऑब्लिगेशंस की वो भी समझ जाएं। मेरा ख्याल है कि ये जो बिहेवियर है अमेरिका का वो किसी दोस्त और इत्तेहादी का बिहेवियर नहीं है।
ये सारा मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नए साल की पहली ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 15 साल में अरबों डॉलर की मदद लेने के बावजूद पाकिस्तान ने अमरीका को सिवाय झूठ और धोखे के कुछ नहीं दिया। उनके इस बयान के बाद अमरीका ने पाकिस्तान की फौजी मदद पर उस वक्त तक रोक लगाने का ऐलान किया था जब तक वो अपनी भूमि पर हक्कानी नेटवर्क समेत उन चरमपंथ ग्रुपों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं करता जिनके खिलाफ कार्रवाई का अमरीका ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया है कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के मुद्दे पर अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रابطے में है और अभी और तफसीलात का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ किया जाना चाहिए और डेडलाइंस और सख्त बयान देने से कॉमन गोल्स को नुकसान पहुंचेगा। शुमाइला जाफरी, बीबीसी इस्लामाबाद।
1 जनवरी को जब अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर छल करने के आरोप लगाए, तब से पाकिस्तान सफाई देने की मुद्रा में था। अब क्या पाकिस्तान अमेरिका को चुनौती देने के इरादे में है? मैंने इस्लामाबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बाबर से यही सवाल किया।
इन दिनों में वाशिंगटन से भी और इस्लामाबाद से भी और रावलपिंडी से भी बहुत ऊंची ऊंची आवाजें हैं और बातें हो रही हैं। असल जो है वो आपको मैं ये बताऊं कि हर दर्जे पे बातचीत हो रही है कि भाई हम आगे रास्ता कैसे निकालेंगे। कल यहाँ एक ऐसे मीटिंग हुई जो बहुत कम देखने में आती है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ अपनी पूरी टीम फॉरेन ऑफिस की लेके, फौजी जर्नेल जो है MI चीफ भी उसमें था, मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी, 3-4 जर्नेल सारे मिलके उन्होंने दावत दी इस्लामाबाद में जो फॉरेन मिशन्स हैं, एम्बेसी हैं, हाई कमीशन है, उसमें सिर्फ भारत के हाई कमिश्नर को दावत नहीं दी गई, बाकी सारे आए थे, उनको ब्रीफिंग दी गई। उन ब्रीफिंग में से जो मुझे बात पता लगी है वो ये है कि पाकिस्तान ने साफ साफ आगे रख दिया है, भाई हमने पिछले 10-12 साल से दहशतगर्दी के जंग में इतना कुछ हमने पाया है, इतना हमने खोया है। 11 दिनों से जो बातचीत पाकिस्तान और अमेरिका की हो रही है उसमें पाकिस्तान ने एक मौजू है वो नहीं छेड़ा, वो ये कि हमें पैसे चाहिए। इतने इतने सालों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने अपना तावन तुर्की से, ईयू से, चीन से, रूस से किया है, तो वो अभी अपना मिलिट्री जो उनको इक्विपमेंट चाहिए होता है वो बाकी मुल्कों से भी ले सकते हैं।
जिस दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग हो भी रही थी, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे थे, उस दौरान भी एक एबटाबाद का मामला आया कि ओसामा बिन लादेन वहाँ बरसों से थे, और ऐसे ही शायद मामलों को लेकर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने धोखे वाली बात भी की है। शेयरिंग जिस दौरान हो रही थी उस दौरान भी प्रॉपर शेयरिंग थी क्या?
जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है वो 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बहुत से मुल्कों में, खासकर बरतानिया में, अमेरिका में, स्पेन में इंटेलिजेंस शेयरिंग की है। हाँ, जहाँ ओसामा बिन लादेन की बात है तो अमेरिकन सरकार, अमेरिकन जर्नल, उनके सियासतदान सब ने कहा है, बल्कि अभी अभी लेटली कहा है कि हमें ये 100% श्योर है कि पाकिस्तान फौज और हुकूमत को मालूमात नहीं थी कि ओसामा बिन लादेन यहाँ है। हमारे असूल दुनिया के ऐसे हैं कि हर मुल्क एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। अगर दस्तगीर साहब की ये बात हम मान लें कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेगा अमेरिका के साथ, तो इसमें दुख किसको होगी, तकलीफ किसको होगी? वो तो फिर अमेरिका के जो फौजी हैं अफगानिस्तान के अंदर या बाहर उनको होगी ना। तो ये तो फिर अमेरिका को सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के बगैर आप यहाँ जंग लड़ सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि बातचीत जारी है, जो दो देशों के बीच में ताल्लुकात होते हैं वो जारी हैं।
तो क्या ये जो बयान है, इन बयानों के परे है अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता, ये रिश्ता आगे भी बरकरार रहेगा?
ये बरकरार रहेगा मगर वैसे नहीं रहेगा जैसे कि हमेशा था, क्योंकि पाकिस्तान के भी अपने हालात बदल गए हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के बगैर अमेरिका के नामुमकिन है। अगर हम अपने ये रास्ते बंद कर दें, सड़क बंद कर दें कि भाई आपका नेटो का कोई सामान यहाँ नहीं जाएगा, तो ये टैंक और इतने भारी भारी चीजें जो यहाँ से जाती हैं क्या वो हवाई जहाज में फिर जाया करेंगी? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डिप्लोमेटिकली भी, फौजी भी लोग जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, उनके भी आएंगे, हमारे भी जाएंगे, ट्रेड भी होएगा। मगर जो बदमजगी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी पे, वो अपनी जगह अभी कभी भी नहीं आएगा।
साल बदला और रिश्ते भी बदलने लगे। ये थी वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बाबर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। भारत प्रशासित कश्मीर में बीते 4 सालों के मुकाबले साल 2017 में हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 400 घटनाओं के दौरान 220 चरमपंथी, 90 सुरक्षाकर्मी और 40 आम नागरिकों की मौत हुई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नए साल में शांति बनाए रखने के लिए 9000 से ज्यादा ऐसे युवकों को आम माफी देने का ऐलान किया है जिनके खिलाफ हिंसा की घटनाओं में भाग लेने का आरोप है। इसका कितना असर होगा, सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पथराव करने वाले युवकों को माफ करने के इशारे पिछले ही वर्ष दे चुकी थीं, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा जम्मू में जारी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि जिन युवकों को माफ किया गया है इन्हें आम नागरिकों की तरह जीने का अवसर देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। गौरतलब है कि 2016 में बुरहान वानी की मृत्यु के बाद जो आंदोलन छिड़ा था इसे दबाने के लिए हजारों लड़कों के विरुद्ध केस दर्ज किए गए और सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल रविदीप शाही ने सरकार के इस फैसले को शांति बहाली की प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम बताया है।
जो एमनेस्टी दिया गया है स्टोन पेल्टर्स को, हमारे हिसाब से ये अच्छा स्टेप है। ये इनकरेज करेगा लोगों को जो एक वायलेंस का रास्ता है छोड़ने के लिए। कई दफ़ा फर्स्ट टाइम गलती हो जाती है लोगों से, और मैं ये चाहूँगा कि जिन जिनों को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ J&K में एक लार्ज हार्टेड अप्रोच शो किया है उसका वो फ़ायदा उठाएँ और अपनी जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव वे में चैनलाइज। करें।
इस घोषणा के बाद श्रीनगर में ऐसे 60 युवाओं ने प्रदर्शन किया जिनके केस 7 वर्ष से लटक रहे हैं। इन्हें पुलिस रिकॉर्ड में निर्दोष तो पाया गया लेकिन केस अभी तक चल रहा है।
जो मतलब बाकी लड़कों को जनरल एमनेस्टी मिली है, अगर हमारा केस रजिस्टर हुआ 2010 में, टिल डेट हमें एमनेस्टी क्यों नहीं मिली है?
मैंने बीबीए किया सर फरीदाबाद और आई एम परसुइंग एमबीए इन फरीदाबाद सर। और सर हम यही चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, आल दो प्रूफ कर दो, हम अगर हम गुनाहगार हैं तो सजा दीजिए, अगर नहीं है तो हमें छोड़ो, हमें क्यों परेशान पे परेशान कर रहे हैं।
इस बीच विश्लेषक इस घोषणा को महबूबा मुफ्ती की राजनीतिक मजबूरी समझते हैं। विश्लेषक और पत्रकार रियाज मलिक,
जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि पंचायती इंतखाबात इंतहाई करीब है, फरवरी के महीने में हो रहे हैं, मिलिटेंट आउटफिट हिजबुल मुजाहिदीन की धमकी भी आई है, उनके एक सरकर्दा कमांडर ने धमकी दी है कि उनकी आंखों पे तेजाब छिड़का जाएगा। यूथ आज का बिफर चुका है, वो सड़कों पर है, वो गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ उनमें ज़बरदस्त नाराजगी यूथ में पाई जाती है। तो ये एक कोशिश है उस यूथ को अपील करने की, उसको एंगेज करने की, ताकि कल आने वाले इलेक्शन जो पंचायत के हैं उसमें उस यूथ को मोबिलाइज करके पंचायत इलेक्शन के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके।
कश्मीर में 2016 के जुलाई में बुरहान वानी की मृत्यु के बाद 7 महीनों तक स्थिति अस्त व्यस्त रही और 100 से अधिक लोग प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाईयों में मारे गए। लेकिन पिछले वर्ष भी हालात गंभीर ही रहे और सैनिक अधिकारियों का कहना है कि 4 वर्ष में यह पहला अवसर है कि एक ही वर्ष में 400 हिंसक घटनाएं घटी जिनमें 220 चरमपंथी, 90 सुरक्षाकर्मी और 40 आम नागरिक मारे गए। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
सुप्रीम कोर्ट ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 186 मामलों की फिर से जांच कराने का आदेश दिया है। जांच नई एसआईटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर वो लोग क्या कह रहे हैं जिन्हें बीते 34 साल से है इंसाफ का इंतजार। सुनिए सर्वप्रिया सांगवान की रिपोर्ट।
1984 के दंगों को 34 साल बीत चुके हैं। सरकार की ओर से नियुक्त पिछली जांच कमेटी ने 293 मुकदमों की जांच करते हुए सबूतों के अभाव में 241 मुकदमों को बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुपरवाइजरी पैनल की सलाह पर इनमें से 186 मुकदमों की जांच का आदेश दिया है। बीते 34 साल में पीड़ितों को मुआवजे तो मिले लेकिन न्याय का इंतजार आज भी है।
क्या मेरे हस्बैंड ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो मेरे को ऐसे मेरे बच्चों को अनाथ ऐसे कर दिया कि पर हमारे को न्याय तो मिले मैम।
लखविंदर कौर पहले तो बात करने से बचती रही क्योंकि कई बार इसी मंजर को अधिकारियों के सामने दोहराते दोहराते थक चुकी हैं। हिम्मत करके जब फिर से अपनी बीती जिंदगी याद करती हैं तो रो पड़ती हैं। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को दंगों में खो दिया था। वो तब से ही डिप्रेशन में हैं।
कैसे मैंने बच्चे पाले, 2 बेटी हैं मेरी, कैसे बड़े किए, कैसे उनकी मैरिज की, बस मैं जानती हूँ किस अपनी लाइफ में अकेली ने कैसे अपनी जिंदगी, जो हो गया से हो गया तो उसको कहते हैं जो ऊपर वाले की करी हुई होती है, पर जो इंसान करते हैं उसके लिए तो जो हो गया वो होने को होना नहीं समझ सकते ना।
50 साल की कौशल्या जब ब्याह कर दिल्ली आई थी तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले 6 महीने में ही कोई दंगा उनके पति को लील लेगा। कौशल्या का दावा है कि उनकी सास अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती रही लेकिन दंगाई उन्हें घसीट कर ले गए। इतने साल उनकी सास ने बयान दिए लेकिन इंसाफ का इंतजार करते करते पिछले साल ही उनकी मृत्यु हो गई।
मेरी सास ने तो बहुत गवाहियां दी हैं बेचारी ने, उनका तो हाथ भी टूट गया था। अब मेरी सास उनके कपड़े कुपड़े भी फाड़ दिए थे उस टाइम।
ये घाव अब भी हरे हैं और थोड़े नाउम्मीद भी कि कभी इंसाफ का फाहा थोड़ी राहत देगा। 53 साल के आत्मा सिंह लुभाना अपनों को खोकर पिछले 30 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी में उनके कई रिश्तेदार मारे गए थे। वो चाहते हैं कि अब जांच से दिल्ली पुलिस को दूर रखा जाए।
हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज भी किसी का झगड़ा हो तो उनको पहले बंद करते हैं, बाद में उसकी इंक्वायरी करते हैं। इसको हम जो बयान दे रहे हैं, सारे कमीशन, रंगानाथ मिश्रा कमीशन, नानावती कमीशन, पोटी रोशा कमीशन, जैन मित्तल कमीशन, नरूला कमेटी जो है, ये सारी जितनी भी कमेटी 10 कमीशन 11 कमीशन बने हैं, सभी ने सज्जन कुमार टाइटलर का नाम लिया, कल्पनाथ राय का नाम लिया, कांग्रेस के और कार्यकर्ताओं का नाम लिया और लोगों का, बहुत लोगों का लिया। तो जब वो ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि ये लोग दोषी हैं और लोग उनको फिर अरेस्ट क्यों नहीं होते ये अब तक।
सुप्रीम कोर्ट ने जिनकी याचिका पर सुनवाई की है वे हैं एस गुरलत सिंह कहलों और मनजीत सिंह। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मनजीत सिंह को कुछ उम्मीद तो बंधी है, लेकिन वो मानते हैं कि ये फैसला बहुत देर से हुआ।
इस वक्त जो सबूत है वो कई खत्म हो चुके होंगे, कई विक्टिम्स विटनेसेस भी इस दुनिया में नहीं रहे, कई कत्ल करने वाले दुनिया से चले गए। मैं ये समझता हूँ कि अब एकदम टाइम बाउंड होना चाहिए।
इस नई जांच टीम के अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। अब सरकार और याचिकाकर्ता को इस जांच टीम के लिए नाम सुझाने हैं, जिसके बाद जांच टीम का गठन होगा। सर्वप्रिया सांगवान, BBC दिल्ली।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज से एक सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत हुई है। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान सैफई महोत्सव पर भी सवाल उठाए जाते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि उन्हें दिक्कत महोत्सव से नहीं बल्कि सरकार के काम करने के तरीके से है।
10 महीने से भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में और 10 महीने में यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। सरकार चूंकि उनकी है, इसलिए वो जो दिक्कतें हैं समाज के सामने, जो राज्य के में जो कानून व्यवस्था का संकट है या अपराधी घूम रहे हैं या विकास रुका हुआ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह अलग विषय है।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। बीते साल BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत को लेकर गोरखपुर चर्चा में था। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं कि मातम के बीच महोत्सव का आयोजन क्यों किया जा रहा है। इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का क्या कहना है, वो भी सुनिए।
मौतें कहीं पर भी हों और किसी कारण से भी हों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी संवेदनाएं भी सबकी हैं और लंबे समय से बीमारी है उस पूर्वांचल क्षेत्र में। हम जब से सरकार में आए तब से प्रयास कर रहे हैं, टीकाकरण के अभियान भी खूब चलाए और ये दुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद है कि इस महोत्सव को जिस तरह से लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब अयोध्या में हमने दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था तो उसकी भी उन्होंने आलोचना की थी। नैमसारण में भी हमने उत्सव किया, कानपुर में भी हमने उत्सव किया, अभी गोरखपुर का भी उत्सव चल रहा है, अभी अगले महीने हम ब्रज में ब्रज का महोत्सव भी करेंगे, वहाँ भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, वहाँ पर होली का भी भव्य कार्यक्रम होगा। तो ये सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि अपनी जो संस्कृति है हमारी उत्तर प्रदेश की, उस संस्कृति का ठीक से प्रचार प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रदेश में आए और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, और जितनी ज्यादा हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा उतने ज्यादा लोग आएंगे यहाँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा मकसद उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास है, वहीं सपा का जो मकसद था वो केवल अपना और अपने परिवार का विकास था, इसलिए सैफई के साथ हमारे इस महोत्सव की तुलना की नहीं जा सकती।
लेकिन जितने भी आपके विरोधी दल हैं उनका एक खास सवाल है कि सरकार स्वेटर नहीं बांट पा रही है, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, जैसे बाराबंकी का भी उदाहरण दिया जा रहा है, इस सब के बीच में सरकार केवल महोत्सवों में लगी हुई है।
ये जो आरोप लगाने वाले हैं ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशंस ये लोग लगा रहे हैं। पहले दिन से ही सरकार आम आदमी के हित के लिए काम कर रही है, किसान के हित के लिए काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिसने बच्चों के लिए अच्छी यूनिफॉर्म का वितरण किया, हम बेसिक शिक्षा में बहुत सुधार भी कर रहे हैं। अब किसी तकनीकी कारण के वजह से थोड़ी कोई उसमें स्वेटर में, निश्चित रूप से हम मानते हैं उसमें तकनीकी कारण रहा और उसमें विलंब हुआ है, इसका हमको खेद भी है, लेकिन सरकार के जो अन्य काम है उसके कारण उन सब कामों पर पर्दा डाल देना और केवल आलोचना करना, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल ही गलत है, ये अनजस्टिस है।
ये थे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, और अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ वंदना नहीं है लेकिन है आपकी पुरानी दोस्त
इंदु पांडे। मेरा भी नमस्कार।
मैं ही इंट्रोडक्शन आपका करा देता हूँ। तो इंदु जी, बहुत दिनों बाद आप आई हैं, आपके पास ईमेल है और चिट्ठियां भी हैं।
ईमेल से शुरू करते हैं,
चिट्ठियों वालों को नाराज कर रही हैं।
बिल्कुल भी नहीं,
नहीं लेकिन दोस्तों नाराज मत होइएगा, चिट्ठियों की बारी भी आएगी
जरूर। यह है नरसिंह शास्त्री नगर मेरठ से, कहते हैं कि लगता है दिल्ली की वर्तमान सर्दी ने BBC के वरिष्ठ समाचार प्रस्तुतकर्ताओं को इतना मजबूर कर दिया है कि सुबह के नमस्कार भारत के प्रसारण के लिए BBC स्टूडियो को नए प्रस्तुतकर्ताओं के जिम्मे छोड़कर गर्म लिहाफों में आराम फरमाए हैं।
अरे ये लगता है हमारी किसी गलती की ओर ध्यान दिला दे रहे हैं।
कहते हैं कि आज 11 जनवरी की सुबह के नमस्कार भारत के कार्यक्रम को सुनकर खुद निर्णय करें कि डिक्शन, एक्सेंट या बहुत सारी कितनी त्रुटियों के साथ कितनी बार अटकने की गलती की गई।
नरसिंह जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे कुछ नए साथी हैं जो रेडियो जिन्होंने कभी नहीं किया है, नए नए साथी हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम दीजिए और जैसे सब्र सबसे बड़ी चीज़ होती है, थोड़ा सब्र कीजिए, चीज़ें दुरुस्त होंगी।
और गणेश प्रसाद हौजदार लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश की 21 वर्षीय आंचल ठाकुर ने स्कीइंग में जो अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर भारत की इज्जत रखी है उसके लिए वो बहुत खुश हैं।
बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं गणेश प्रसाद जी। और कई दिनों बाद आपकी चिट्ठी मिली है, आपका ईमेल मिला है, अच्छा लगा।
और ये ईमेल भेजा है अंजलि ने, लिखती हैं कि मैं श्योहर बिहार की रहने वाली हूँ और तब से बीबीसी सुन रही हूँ, जब मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी।
अरे वाह क्या बात है।
पर जब से पटना आई हूँ नहीं सुन पाती क्योंकि बीबीसी हिंदी रेडियो मोबाइल पर सुनना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
तो ये तो बहुत आसान है अंजलि, आप अपना मोबाइल ऑन कीजिए, उसमें अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो उसमें bbchindi.com कीजिए, उसमें हमारे सभी कार्यक्रम आप लाइव सुन सकती हैं। और हमारा फेसबुक जो पेज है बीबीसी हिंदी का, उसे लाइक कीजिए, उसमें भी हम सुबह और शाम दोनों प्रोग्राम लाइव जाते हैं। अगर आप मोबाइल पे सुनना चाहें मोबाइल पे, रेडियो पे सुनना चाहें रेडियो पे, हम तो हर जगह मौजूद हैं।
और ये है नमस्कार, कहते हैं गौरव पोरिया जो शामली उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, 25 साल के हैं।
बहुत नए नए हमारे श्रोताओं की चिट्ठियां आ रही हैं अंजलि और ये गौरव पोरिया, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने चिट्ठी पहले भेजी भी होगी तो हमने, मेरे ध्यान में तो नहीं पड़ता।
लिखते हैं कि पेशे से उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हूं और 4 या 5 सालों से बीबीसी की शाम की सभा दिन भर को सुना तो ऐसा लगा जैसे बीते हुए दिन
4 या 5 वर्षों बाद। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं 4 या 5 वर्षों बाद पहले सुनते थे और अब कई सालों बाद सुना है।
जी, तो बहुत अच्छा लगा कि वापस लौट गए, क्योंकि ये जब 6 साल के थे तब अपने पिताजी के साथ बीबीसी सुना करते थे।
क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
और ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं एहसान असगर साहब।
जी हाँ, बहुत ही जाना पहचाना नाम है।
ये बुलढाणा महाराष्ट्र से लिखते हैं कि इस बार इंडिया बोल का विषय भी समय को ध्यान में रखकर चुना गया था और बहस में सार्थक रही, पर अच्छी बात ये रही कि मैक्सिमम फोन मुस्लिम समाज के ही लोगों के लगे जो इस विषय में इन्वॉल्व रहे।
हाँ, क्योंकि मसला ये मुस्लिम समाज को लेकर के ही था, शायद इस वजह से ज़्यादा जो हमारे मुस्लिम श्रोता हैं उन्होंने शिरकत की। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन किस समाज के बारे में बात हो रही है, हम सब के लिए प्रसारण करते हैं और सब के लिए बीबीसी का दरवाजा खुला है।
और हमारे एक और नए श्रोता आए हैं जिनका नाम है अमित मिश्रा, 19 साल
आज
के
तो
हैं।
अच्छा दिन है हम लोगों का।
बिल्कुल, बीए कर रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बस ये कहते हैं कि जो नए सहकर्मी आए हैं थोड़ा असहज महसूस करते हैं और इनका ये पहला मेल है।
उच्चारण संबंधी जो दोष है उसको हम स्वीकार करते हैं, जैसा कि मैंने अपने दूसरे श्रोता से कहा था कि थोड़ा सब्र कीजिए, तो मैं आपसे भी वही कहूंगा अमित कि आप भी थोड़ा सब्र कीजिए।
ये पोस्ट कार्ड हमारे पास भेजा है अशोक कुमार ठाकुर ने, मालीटोला अदलपुर दरभंगा बिहार से। ये भी कहते हैं कि रेडियो बीबीसी की सांध्यकालीन सभा में परमाणु युद्ध के बारे में जो जानकारी दी गई बहुत अच्छी लगी।
जी,
और ये हमारे पास चिट्ठी आई है भुवेश की, दुर्गा कॉलोनी पिलानी सादलपुर से। ये भी कहते हैं,
साफ साफ इन्होंने नहीं लिखा है, भवेश तो समझ में आ रहा है लेकिन मरोलिया लिखा है, मटोलिया लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा। दुर्गा कॉलोनी पिलानी क्या लिखते हैं?
लिखते हैं कि विवेचना इनको बहुत पसंद है और काफ़ी तारीफ करते हैं रेहान फजल साहब की हमेशा की तरह।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक मैं अंतर्देशीय लिफाफा देख रहा हूँ, असद अली हमारे रामपुर के श्रोता हैं, उन्होंने भी कुछ लाल इंक में लिखा है, क्या लिखते हैं?
लाल इंक में इन्होंने लिखा है कि उत्तर कोरिया के पास 51 किलोग्राम के 8 परमाणु बम हैं।
अरे बाप रे, तो बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी असद साहब आपने लिखी है।
वर्षांत हमारे जो कार्यक्रम थे बीबीसी के, उनको सुनने के बाद ये गार्डन यानी कि बाग
हो गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हमारे पास नहीं बचा, इसलिए चलते चलते पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk और ईमेल में अपना गांव शहर का पता लिखना न भूलिएगा।
नमस्कार।
क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में जो जंग हुई थी और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ था, उससे तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी नाराज हो गई थी? अगर आप इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो रुक कीजिए bbchindi.com का। वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं मानसी दास से।
बीबीसी समाचार।
امریکہ کے پاکستان کو سینی مدد روکنے کے بعد پاکستان کے رکشا منتری خرم دستگیر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سینی سہیوگ اور خفیہ جانکاری ساجھا کرنے پر پاکستان روک لگا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں ون وبھاگ کے ادھیکاری ایک چیتے کی تلاش کے لیے بڑا ابھیان ادھیکاریوں نے چھیڑا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس چیتے نے بیتے 3 دنوں میں 3 بچوں کو مار دیا ہے۔ یورپی سنگھ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ سبھی پکش سال 2015 میں ایران پرمانو سمجھوتے کو پوری طرح سے لاگو کرنے میں مدد کریں گے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے گٹھ بندھن سرکار بنانے کے لیے آخری دن کی بات چیت کے بعد کہا کہ ابھی بھی مکھیہ مدوں پر سہمتی بننا باقی ہے۔ یوکرین کی سینا نے کہا ہے کہ دیش کے پوروی حصوں میں جاری سنگھرش میں بیتے 24 گھنٹوں میں 3 سینکوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ 4 سینک گھائل ہوئے ہیں۔ سینا نے کہا ہے کہ روس سمرتھت الگاؤ وادیوں نے یوکرین کے ٹھکانوں پر گرینیڈ، مشین گنوں اور موٹروں سے 7 بار حملہ کیا ہے۔ ایران میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے چھپ کر گانا گانے والے 20 سے ادھک گائکوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے دیش کے دکشنی حصے میں موجود شہر باندر عباس میں 2 چھاپے مارے تھے۔ حراست میں لیے گئے لوگوں میں 9 مہیلائیں شامل ہیں۔ بی بی سی سماچار۔
دن بھر میں آج اتنا ہی۔ کارکرم کا سنچالن کیا راجیش چوہان نے، فیس بک لائیو آپ تک پہنچایا پرگیا مانو نے۔ آپ سے اگلی ملاقات صبح 6:30 بجے نمسکار بھارت میں ہوگی۔ تب تک خبروں کے اپڈیٹ کے لیے آپ کے ساتھ ہے ہماری ملٹی میڈیا ویب سائٹ bbchindi.com۔ واتسلیہ رائے کو دیجیے انومتی۔ نمسکار۔